ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா சாப்டர் 10 வர்ஸ் நம்பர் 35 and 36. இஸ் ஆத்யாத்மிக் ஜான் மே பிரவேஷ் கரனே சே பஹலே குரு ஆர் கௌரங்க சே கிருபா கி யாச்னா கர்தே ஹுவே மங்கள் ஆச்சரண் கரேங்கே தாக்கி ஹம் ஜோ அத்யயன் கர் ரஹே ஹே உஸ்கா பூரா பூரா லாப் பிராப்த ஹோ சகே ஜோ கி ஹே கிருஷ்ண பிரேம் கி பிராப்தி. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஜ்ஞானஞ்சனா ஷலாகய சக்ஷுருன்மீலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹயம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீகுரு ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷவாம்ஸ ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சகண ரகுநாதன் விதந்தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிசனசஹிதம் கிருஷ்ணசைதன்யதேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ணபாதா சஹகணலலிதா ஸ்ரீவிசாகான்விதம் ஹே கிருஷ்ண கருணாசிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபீஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்த நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌரங்கே ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விருஷபானோ சூதிதேவி பிரணமாமி ஹரி பிரியே. வம்சாகல்பதருப்யஸ்ய கிருபாசிந்துப்ய ஏவச பதீதனாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நம. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசதி கௌர பக்தவிருந்த. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸ்ரீநாராயண உச்சு ஸ்ருணு ஸ்ருணி வக்ஷாமி கீதாயாஸ்துதி மாத்மனா வக்த்ராணி பஞ்ச ஜானீஹ பஞ்சாத்யாயானுக்ரமம் உதரம் தௌ பாதமாம்புஜே ஏவமஷ்டாதசோத்யாயோ வாங்மயி மூர்த்தி ஈஸ்வரி. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா மாத கி ஜெய ஹோ. அத்யாய 10 ஸ்லோக் சங்கியா 35 and 36. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண கே முகார்விந்த் சே நிக்லே ஹுவே இன் அத்தியந்த ஹி பவித்ர சப்தோ கோ மேரே சாத் சாத் அத்யயன் கரனே கா பிரயாஸ் கீஜியே. பகவான் கேதே ஹே ப்ரிஹத் சாம ததா சாம்நாம் காயத்ரி சந்த சாமஹம் मासानां मार्गशीर्षो हम ऋतूनां कुसुमाकर बृहत्साम तथा साम्ना गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकर बृहत्साम तथा साम्ना गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकर शब्दार्थ बृहत्साम यथा साम्नाम। बृहत्साम एक सेक्शन है बृहत्साम जो सामवेद के मंत्रों में है। तो यथा साम्नाम यानी सामवेद के गीतों में मैं बृहत्साम साम हूँ। गायत्री यानी गायत्री मंत्र छंदसाम समस्त छंदों में अहम मैं हूँ। मासानाम अर्थात महीनों में मार्गशीर्ष नवंबर दिसंबर अगहन का महीना अहम मैं हूँ। ऋतुनाम अर्थात समस्त ऋतुओं में कुसुम आकरम यानी वसंत। अनुवाद मैं सामवेद के गीतों में बृहत साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मार्गशीर्ष अर्थात अगहन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर मार्मिक तात्पर्य से हमें समझाएंगे। हम सब ध्यान से श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को श्रवण करेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जैसा कि भगवान स्वयं बता चुके हैं कि वे समस्त वेदों में सामवेद हैं। सामवेद विभिन्न देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। इन गीतों में से एक बृहत साम है जिसकी ध्वनि मधुर है और जो अर्धरात्रि में गाया जाता है। यहाँ पर जो बृहत साम भगवान कहते हैं ना बृहत साम तथा साम नाम, तो जितने साम वेद के अंदर जितने मंत्र हैं उसमें एक बृहत साम है, एक सेक्शन है और उसको आधी रात को गाया जाता है। ये गीत है और उसको आधी रात को गाया जाता है और ये बहुत ही मधुर ध्वनि है, तो इससे बहुत ही आनंद आता है श्रवण करने वाले को। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं संस्कृत में काव्य के निश्चित विधान है, यानी काव्य यानी जो भी कविता होती है या जो पोइट्री होती है उसके अंदर एक निश्चित विधान से बनाया जाता है। ऐसे नहीं कि बस जिसका जो आया उसने लिख लिया उसने गा लिया और बस ऐसा नहीं है। संस्कृत में विधि विधान के साथ उसको उसकी रचना की जाती है। तो इसमें लय तथा ताल बहुत सी आधुनिक कविता की तरह मनमाने नहीं होते हैं। यहाँ पर आधुनिक जो कविताएं होती हैं जो सॉन्ग्स होते हैं जो छंद वो ऐसे मतलब कोई लय नहीं कोई ताल नहीं बस गाया मिला के और गा दिया बस ऐसे मनगढ़ंत होता है। मतलब उसमें मनमाने तरीके से कर लेते जिसको जैसा अच्छा लगता है। और आज के लोग इतने बुद्धिहीन हैं कि उसमें आनंद ढूंढते हैं। ये है आज के मनुष्य की पहचान है कलयुग के मंदा सुमंद मतयो। उनकी बुद्धि इतनी चीप हो गई है कि जो बहुत रस वाली जो बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से जो कविता होगी ना वो उनके पल्ले ही नहीं पड़ेगी। उनके पास इतनी बुद्धि है ही नहीं उनको समझ में नहीं आएगी। ये जो उल्टे सीधे जो गाने होते हैं सॉन्ग होते हैं जिसके अंदर ना कोई सुर है ना ताल है वो उनको अच्छा लगता है। तो ये मनमाने ढंग से उनका कोई विधि विधान नहीं बस जिसको जैसे अच्छा लगता है उसको ऐसे गा लिया उसने। तो ऐसे नियमित काव्य में गायत्री मंत्र जिसका जप केवल सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होता है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जो गायत्री मंत्र है उसकी क्वालिटी है श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं। सबसे पहली क्वालिटी कि बहुत ही ध्यान से बनाया गया है, इसमें हर एक शब्द को बहुत ही अच्छी तरीके से उसकी रचना की है। भगवान ने स्वयं कहा है गायत्री छंद सामहम के बहुत सारे छंद हैं। छंद मतलब कविता, ऐसे श्लोकास हैं, मंत्रास हैं, लेकिन उसके अंदर जो गायत्री मंत्र है ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको मतलब चुन चुन के शब्दों को इस तरह से वेद में बनाया गया है बहुत ही सुंदर तरीके से। और ऐसे नियमित काव्य में गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र की सबसे और भी उससे बड़ी विशेषता ये है कि उसको हर कोई साधारण व्यक्ति जप नहीं कर सकता। आज तो हम देखते हैं रास्तों में टेप में चल रहे होते हैं गायत्री मंत्र, कोई भी बच्चा है वो कहीं पर खड़ा होके गलत तरीके से गलत स्थान में बैठ के गायत्री मंत्र का जप करता है, तो ऐसा नहीं है। गायत्री मंत्र ऐसे नहीं जप किया जा सकता, उसके लिए क्वालिफिकेशन होती है। अगर हम बगैर क्वालिफिकेशन के, पात्रता प्राप्त किए बगैर अगर हम गायत्री को उच्चारण भी करते हैं ना, तो उससे भी अपराध लगता है। तो ये बहुत ही आजकल के हमारे हम सब बुद्धि इतनी सही नहीं है, तो हमको ये सब मंत्रास दूसरे दूसरे मंत्रास को उच्चारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है अपराध लगता है। मंत्र पढ़ने से भी अपराध लगता है। सिर्फ एकमात्र महामंत्र ऐसा मंत्र है जो हम किसी भी अवस्था में किसी भी स्थान पर किसी भी स्थिति में हम जप कर सकते हैं। तो श्रीमंत ये जो गायत्री मंत्र है उसका जप करने के लिए सबसे पहली क्वालिफिकेशन आप ब्राह्मण होने चाहिए, यानी जिसने ब्राह्मण दीक्षा ली हुई होती है सिर्फ वही गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। और दूसरा उसके लिए एक पोजीशन होती है कि आपको इस तरह से बैठना, जैसे महामंत्र के लिए आपको पोजीशन की आवश्यकता नहीं होती है, आप सीधा भी बैठ सकते हो, आप बाल्टी मेज के भी बैठ सकते हो, आप सोफे पे भी बैठ सकते हो, जिससे आपको स्वीटेबल लगे, आपका ध्यान किस तरह से लग रहा है, आप मतलब आपको कहीं पर पेन हो रहा है तो आप थोड़ा सा टेक लगाकर भी सही तरह से होकर बैठ सकते हो। लेकिन गायत्री मंत्र ऐसे नहीं, उसके लिए आपको बैठने की भी पोजीशन होनी चाहिए, और बैठने के लिए जो स्थान आपने चॉइस किया है वो भी हर स्थान पर नहीं, वो भी एक पवित्र स्थान होगा, उसके लिए आपको आसन भी लगाना होता है। गायत्री मंत्र जप करने के लिए एक आसन बिठा के उसके ऊपर ही आपको, तो ये सारे नियम है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं ब्राह्मणों के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण है। गायत्री मंत्र का उल्लेख श्रीमद् भागवतम में भी हुआ है, क्योंकि गायत्री मंत्र विशेषतया ईश्वर साक्षात्कार की ही निमित्त है, इसलिए यह परमेश्वर का स्वरूप है। ये वास्तव में प्राप्त गायत्री मंत्र जो है वो ईश्वर साक्षात्कार के लिए है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये साक्षात ईश्वर का ही स्वरूप है। यह मंत्र आध्यात्म में उन्नत लोगों के लिए है। जब इसका जप करने में उन्हें सफलता मिल जाती है तो वे भगवान के दिव्य धाम में प्रविष्ट होते हैं। जब कोई व्यक्ति ये जो गायत्री मंत्र जो है उसमें यदि सफलता प्राप्त कर लेता है, फिर उसे भगवत धाम में प्रविष्ट होने की अनुमति मिल जाती है। गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुण या भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करने होते हैं। हर गुण वाला, जैसे साधारणतः हम रजोगुण और तमोगुण में होते हैं ना, तो उसमें गायत्री मंत्र नहीं, गुण को अपने गुणों को सत्वगुण में परिवर्तित करके जब सिद्ध पुरुष के गुण यानी भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार जो सात्विक गुण होता है उसको प्राप्त कर लेते हैं, फिर हम गायत्री मंत्र उच्चारण करने के योग्य बनते हैं। वैदिक सभ्यता में गायत्री मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसे ब्रह्मा का नाद अवतार माना जाता है। ब्रह्मा इसके गुरु हैं और शिष्य परंपरा द्वारा यह उनसे आगे बढ़ता है। ब्रह्मा जी जो हैं वो गायत्री मंत्र के गुरु हैं, और शिष्य परंपरा से आज हम श्री प्रभुपाद जी और उनके शिष्यों के द्वारा इस मंत्र को प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। कहते हैं शास्त्र में, और ये जो हमारे जो आचार्य होते हैं वो हमें ये शिक्षा देते हैं कि जब आप हरिनाम दीक्षा के बाद महामंत्र को प्राप्त करते हो, उस महामंत्र को जपते 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 जब आपका रजोगुण और तमोगुण समाप्त हो जाता है, फिर आप इस योग्य बनते हो कि आप ब्राह्मण दीक्षा लेते हो। और देखो हरि नाम दीक्षा हम अपनी इच्छा से लेते हैं, किसी से भी हम मतलब कोई भी हम थोड़ा सा भक्ति में आगे आए तो किसी शुद्ध वैष्णव को गुरु बना के हम उससे हरि नाम दीक्षा ले सकते हैं। लेकिन ब्राह्मण दीक्षा के लिए आपके अंदर बहुत सारी योग्यताएं होनी चाहिए। उसके अंदर जो है ना वो शास्त्रों का अध्ययन भी आप करते हो और अपने विधि विधानों में रूल्स एंड रेगुलेशन में भी जब बहुत ज्यादा आपके अंदर दृढ़ता आ जाती है फिर कोई जो आपका सीनियर डिवोटी होता है वो आपको आग्रह करता है कि अब आपको ब्राह्मण दीक्षा लेनी। यानी कि ये आप अपने से नहीं निश्चित कर सकते कि आप अब योग्य हो गए हो, कोई सीनियर डिवोटी आपको संकेत करता है, फिर आपको उसके लिए स्ट्रगल करनी है कि मुझे ब्राह्मण दीक्षा लेनी है तो मुझे बहुत ही सीरियस होना है अभी भक्ति में। और उसके बाद ये जो गायत्री मंत्र जब हम उच्चारण करते हैं ना तो गायत्री मंत्र का एकमात्र लक्ष्य ये होता है कि आप ये इतना आपके मंत्र को आपके महामंत्र को इतना सिद्ध कर देता है कि आप उसके मतलब पहले हमारा महामंत्र जो होता है उसको बहुत बल प्राप्त होता है जब हम तीन टाइम गायत्री करते हैं। ये जो महामंत्र है उसी के द्वारा हम कृष्ण को प्राप्त करेंगे, लेकिन ये गायत्री मंत्र जो है उसका काम क्या है कि वो आपकी महामंत्र के अंदर श्रद्धा इतनी दृढ़ कर देता है, इतना पावर बूस्ट मिलता है उसको कि जिसके द्वारा आप जो है ना वो महामंत्र के अंदर कृष्ण को का साक्षात्कार करते हो। क्योंकि अभिन्नत्वा नाम नामिनो कहना एक अलग बात होती है लेकिन महामंत्र के अंदर कृष्ण का साक्षात्कार और रस प्राप्त होने लगता है जब हम गायत्री उच्चारण करते हैं। जब गुरु महाराज हमें ब्राह्मण दीक्षा देते हैं और जब हम गायत्री का उच्चारण करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और हर एक भक्त को यह इच्छा करनी चाहिए हृदय के अंदर कि एक समय ऐसा आए जब गुरु महाराज मुझे गायत्री मंत्र प्रदान करें जिसके द्वारा मेरी हरिनाम में जो रुचि है वो आसक्ति में बदल जाए और वो आसक्ति जो है वो प्रेम में बदल जाए। तो ये बहुत ही किसी के ऊपर जब गुरु महाराज की बहुत बहुत कृपा होती है तब उसे गायत्री मंत्र का जाप करने का अवसर मिलता है और ये शिष्य परंपरा से आज हम प्राप्त कर सकते हैं। श्री प्रभुपाल जी के जितने शिष्य हैं उनके द्वारा जो सन्यासी हैं उनसे ये ब्राह्मण दीक्षा लेनी चाहिए। आगे है मासों में अघन यानी मार्गशीर्ष यानी मार्गशीर्ष का जो महीना है वो सर्वोत्तम माना जाता है क्योंकि भारत में इस मास में खेतों में अन्न एकत्रित किया जाता है और लोग अत्यंत प्रसन्न होते हैं। निसंदेह वसंत ऐसी ऋतु है जिसका विश्व भर में सम्मान होता है क्योंकि यहाँ ना तो बहुत गर्म होती है ना सर्द और इसमें वृक्षों में फूल आते हैं। वसंत में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित अनेक उत्सव भी मनाए जाते हैं अतः इसे समस्त ऋतुओं में से सर्वाधिक उल्लासपूर्ण माना जाता है और यह कृष्ण की प्रतिनिधि है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयति किरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। अध्याय 10 श्लोक संख्या 35। इसमें भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर रीति से अपनी विभूतियों के विषय में बताते हैं। भगवान कहते हैं बृहत् साम तथा साम नाम। अभी देखो चार वेद होते हैं ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद। उन चार वेदों में भगवान ने कहा कि सामवेद में हूं। जब हमने 10.22 पढ़ा था उसमें भगवान ने बताया था वेदानाम सामवेदोस्मि, वेदों में मैं सामवेद हूं। अभी सामवेद की क्या महत्ता है जो भगवान ने अपने आप को सामवेद बताया दूसरे वेदों से, क्या इसकी क्या महानता क्या है? देखो ऋग्वेद में क्या आता है, ऋग्वेद के मंत्र में, वैसे तो ये वेद बहुत बहुत विशाल है, इनको हम एक शब्द में बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर हम जैसे ब्रीफिंग उसका एक्सप्लेन करें तो क्या है कि ऋग्वेद में आवाहन के मंत्र हैं। जैसे जब यज्ञ होता है तो देवताओं को बुलाने के लिए जो मंत्र जप किए जाते हैं वो ऋग्वेद में है, और उसके बाद है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में क्या है, रिचुअल परफॉर्मेंस के जब कोई देवता आ जाता है तो फिर उस समय मतलब यज्ञ के समय हम कौन कौन से मंत्रास उच्चारण करें, कैसे आहुति अर्पण करें, किस तरह से क्या क्या मंत्र जप करें, तो ये सब जो रिचुअल परफॉर्मेंस है वो क्या है, यजुर्वेद में है। और जो सामवेद है उसको कहा जाता है वेदा ऑफ ग्लोरिफिकेशन, यानी महानता को बखान करने वाला। इसकी जो मंत्र है सामवेद के वो भगवान की, और जो भी मतलब महानता को बखान करने वाले जो मंत्रास हैं वो बहुत ज्यादा है सामवेद में, और उनका बहुत ही सुंदर रीति स्वर से लिखे हुए, जैसे श्रील प्रभुपाद जी बताते ना कि बहुत ही मधुर है उनके जो शब्द हैं, बहुत ही मधुर उसकी ध्वनि है ना, वो बहुत स्वर वाली है। और ऐसे सामवेद में एक सेक्शन है बृहत साम, और बृहत साम में क्या है देवराज इंद्र की महानता के बहुत ही सुंदर सुंदर गीत लिखे हुए। ये सब गीत हैं, और इंद्र जब स्वर्ग में अप्सराएं और गंधर्व जब इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गीत गाते हैं तो उसमें वो बृहत साम के जो ये जो मंत्रास हैं उसका उच्चारण करते हैं। अप्सराएं और गंधर्व मिलकर गंधर्व गाना गाते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं, और उसमें बृहत साम के शब्दों को उच्चारण किया जाता है। और इस भौतिक जगत में ग्लोरिफिकेशन के जितने भी गीत हैं उनमें बृहत साम जो है वो बेस्ट है, बहुत ही सुंदरता से इसमें ग्लोरिफिकेशन बताई जाती है। तो वैसे हम जानते हैं जब चैतन्य महाप्रभु जब रामानंद राय से मिले थे, उन्होंने पूछा था कि सबसे महान गीत कौन सा है, तब रामानंद राय ने बताया था कि प्रभु जिसमें राधा कृष्ण की महिमा का बखान हो ना, केवल वही गीत जो है वो बेस्ट है, सारे गीतों में बेस्ट वही है जिसमें राधे कृष्ण की महिमा का बखान हो। लेकिन वो जो स्टेज है वो दिव्य स्टेज है, वो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल स्टेज है। और यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं, भौतिक स्तर पर जो जो वस्तुएं हैं उनमें जो ग्रेटेस्ट है वो मेरी विभूति है, इस तरह से बता रहा ना। तो ये जो बृहत साम के जो भौतिक स्तर पर अगर हम देखें तो ग्लोरिफिकेशन के जितने भी गीत हैं उसमें ये जो बृहत साम है वो सबसे ज्यादा महान है, और इसमें बहुत ही सुंदरता से शब्दों की रचना की गई है, बहुत मधुर वाणी है, इसलिए भगवान कहते हैं कि बृहत साम यथा साम नाम। और आगे कहते हैं गायत्री छंद साम हम, गायत्री जो है वो ऋग्वेद में एक छंद है, दूसरे में बहुत सारे छंद हैं, परंतु इस गायत्री की महानता के विषय में अभी हमें श्री प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि ये जो है वो बहुत ही सुंदरता से विधि विधान से इसकी रचना की हुई है, और सुपात्र ब्राह्मण के द्वारा ही इसको उच्चारण करना चाहिए। और गायत्री मंत्र के जप करने के लिए मनुष्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुण से सत्व गुण के स्तर तक आना चाहिए, ब्राह्मण दीक्षा लेनी चाहिए, उसके बाद गुरु आदेश का पालन करके इस गायत्री को जब हम जप करते हैं तो हमारा मंत्र सिद्ध होता है, तो हमारा मंत्र सिद्ध होता है। इसलिए गायत्री मंत्र जो है बाकी सारे जितने छंद हैं छंदों में सबसे ज्यादा महान है, क्योंकि ये हमें मंत्र की सिद्धि प्रदान करता है। और आगे है मासाना मार्गशीर्षो हम, मासा यानी महीनों में, अभी सारे महीने होते हैं लेकिन नवंबर दिसंबर का जो मार्ग का महीना होता है वो बहुत ही सुंदर होता है। एक तरफ तो खेतों में अनाज उगता है, बहुत ही सारे फल फूल इतने प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं, और मतलब ये जो प्रकृति है ना इसके अंदर जो उपज है वो इन मार्ग के महीने में जो है ना वो हमें बहुत अच्छी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। इसके लिए सारे लोग जो है वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं इन महीनों में, तो इसलिए भगवान कहते हैं मासाना मार्गशीर्षो हम। और उसके बाद है ऋतु नाम कुसुमाकरम, ऋतु का क्या मतलब होता है,
ऋतु मतलब मौसम ऐसा। वैसे तो चार मौसम बताए जाते हैं, सर्दी, गर्मी, खिजा और बहार। लेकिन ये जो बहार का महीना है, कुसुम आकरम, आकर का मतलब होता है क्रिएटर और कुसुम का मतलब होता है जो सुगंध, जो पुष्प होते हैं उन पुष्प खिलने वाली, जो फूल खिलने वाली जो ऋतु है जिसमें बहुत सारे फूल खिलते हैं, बसंत का जो महीना होता है, तो वो क्योंकि सारी ऋतुओं का राजा है और इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, ना ज्यादा गर्मी होती है ना कोई ज्यादा सर्दी होती है। और इस महीने में बहुत सारी लीलाएं होती हैं, होली का त्यौहार मनाया जाता है, पुष्प अभिषेक किया जाता है भगवान का। तो इस ये महीना जो भगवान कहते हैं इसमें मैं इन महीनों में मैं मार्ग श्रेष्ठ हूँ। आगे भगवान श्लोक नंबर 36 में बहुत ही सुंदर बता रहे हैं, कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं द्यूतम चलयतामस्मि तेजस तेजस्वी नामहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहं द्यूतं चलयतामस्मि तेजस तेजस्वी नामहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहं। शब्दात् द्यूतम चलयतामस्मि, द्यूतम कहते हैं जुवा को, चलयता मतलब समस्त छलियों में या धूर्तों में, अस्मि में हूँ, तेज तेज यानी चमक दमक, तेजस्वी नाम जितने भी तेजस्वी हैं उनका तेज में हूँ, और जय यानी विजय अस्मि में हूँ, व्यवसाय यानी जोखम या साहस अस्मि में हूँ, सत्वम सत्ववता मतलब सत्व यानी बल, सत्वता मतलब बलवानों का अहम में हूँ। अनुवाद, मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ, मैं विजय हूँ, मैं साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की छलियां हैं, समस्त छल कपट कर्मों में द्यूत क्रीड़ा यानी जुआ सर्वपरि है और यह कृष्ण का प्रतीक है। परमेश्वर के रूप में कृष्ण किसी भी सामान्य पुरुष की उपेक्षा अधिक कपटी यानी छल करने वाले हो सकते हैं। यदि कृष्ण किसी से छल करने की सोच ले तो कोई उनसे पार नहीं पा सकता। उनकी महानता एकांगी न होकर सर्वांगी है। वे विजयी पुरुष की विजयी हैं और तेजस्वियों के तेज हैं। साहस तथा कर्मठों में वे सर्वाधिक साहसी तथा कर्मठ हैं। वे बलवानों में सर्वाधिक बलवान हैं। जब कृष्ण इस धराधाम में विद्यमान थे तो कोई भी उन्हें बल में हरा नहीं सकता था। यहाँ तक कि अपने बाल्यकाल में उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। उन्हें ना तो कोई छल में हरा सकता है, न तेज में, न विजय में, न साहस में। श्री प्रभुपाद की जय हो। अत्यंत ही सुंदर यहाँ पर भगवान अपनी अधिक विभूतियों के विषय में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं द्यूतम, द्यूत का मतलब होता है जुआ, द्यूतम छलयतामस्मि, छल का मतलब होता है चीटिंग करना, किसी के साथ हम चीटिंग करते हैं ना उसको छल बोलते हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं द्यूतम छलयताम, यानी चीटिंग करने वालों में मैं द्यूत हूँ। अभी देखो साधारणतया यदि कोई किसी के साथ छल करता है तो क्या करता है, कोशिश ऐसी करता है कि मैं छल करके उसका सारा का सारा धन लूट लूं और उसको पता ना चले, है ना। उसको हम अगर कोई पॉकेट मनी, पॉकेट जो है उसको चुराने वाला होता है तो क्या करता है, वो इसी इस ना गुण के साथ पॉकेट को काटेगा कि उसको पता ना चले, और उससे वो पूरा का पूरा उसका धन ले जाएगा। जैसे किसी का धन जायदाद जो भी हम चोरी करना चाहेंगे या छल से उससे लेना चाहेंगे, तो उसका मतलब क्या है, छल से ले लिया मतलब उसे पता ही नहीं चला। लेकिन गैम्बलिंग या द्यूत या ये जो जुआ है वो एक ऐसा छल है कि उसके लिए उसके उसके द्वारा आप अपना सब कुछ स्वयं अपने हाथों से उसको दे देते हो। यानी ऐसा है कि द्यूत कीड़ा के टाइम पर आपके साथ कोई छल नहीं किया जा रहा होता है, ये नहीं कि आपको पता ही नहीं चल रहा है। जब युधिष्ठिर महाराज द्यूत खेल रहे थे तब ऐसा नहीं था कि दुर्योधन ने छल से, भले छल हो रहा था वहां पर पासों में, लेकिन वो दाव पे खुद लगा रहे थे। कभी बोल रहे थे मैं अपने छोटे भाई को दाव पे लगा रहा हूँ, कभी बोल रहे थे मैं अब अर्जुन को दाव पे लगा रहा हूँ। और जब सारे भाइयों का हो गया तब उन्होंने कहा मैं अपनी द्रौपदी पत्नी अपनी द्रौपदी को भी दाव पे लगा रहा हूँ। तो किसी ने उनको इसके लिए, ऐसा नहीं था कि दुर्योधन ने उसको जबरदस्ती किया होगा या फिर तलवार के जोर पर उसने ये लगाया होगा, नहीं, वो अपनी इच्छा से लगा रहे थे। तो ये द्यूत ये एक ऐसा छल है जिसमें ना केवल आप सामने वाले की संपत्ति को हरण करते हो बल्कि उसकी बुद्धि को भी हरण कर देते हो। उसके अंदर बुद्धि ही नहीं रहती कि वो अपनी वस्तु को बचाए, वो बल्कि अपनी वॉलंटरी वो सारी वस्तुएं आपको दे रहा होता है। वो देख रहा होता है मैं हार रहा हूं लेकिन फिर भी वो अपनी स्वेच्छा से वो हार स्वीकार करता है। क्योंकि द्यूत के अंदर एक ऐसा नशा होता है, उसको ऐसा लगता है कि ये दाव में नहीं हारूंगा, लेकिन फिर हार जाता है, ऐसा होता है ना। तो ये जो द्यूत है वो बहुत ही घिनौना अपराध है, चार जो महा अपराध है उसके अंदर इसका नाम आता है द्यूत, जुआ। और ये द्यूत जो है वो हमारे सत्य का नाश करता है। लेकिन भगवान जो है वो हर एक तरह से पूर्ण है, भगवान के अंदर संपूर्ण मदा, वो पूर्ण है, संपूर्ण है। तो उनके अंदर हर एक क्वालिटी है, जितनी भी क्वालिटीज हैं वो सारी की सारी भगवान के अंदर है, तभी तो जीव के अंदर है। तो कृष्ण को कोई भी किसी भी गुण में हरा नहीं सकता। अगर कोई किसी के पास छल है, वो छल जानता है, छल करना जानता है, तो भगवान कहते हैं तो कितना छल करोगे। अगर कृष्ण भगवान है और भगवान कोई सामान्य पुरुष की उपेक्षा हर गुण में अधिक ही होगा, है ना। अगर वो कपटी भी होगा तो सब कपटियों में ज्यादा अधिक कपटी होगा, छल करने वाला होगा। तो यदि कृष्ण किसी से छल करने की सोच ले तो कोई भी उनसे पार नहीं पार सकता, वो हमेशा हारेगा। तो भगवान कहते हैं द्यूतम छलयतामस्मि, के लोग भले किसी को कितना ही चीट करें लेकिन वो साक्षात द्यूत जिस चीटिंग के द्वारा वो स्वयं अपना सब कुछ दे देते हैं वो मैं हूं। और आगे कहते हैं तेज तेजस्वी नाम हम। हम देखते हैं संसार में कुछ जीव कुछ मनुष्य उनके अंदर बहुत ज्यादा तेज होता है जो अपनी ओर आकर्षित करता है। भगवान कहते हैं वे साधारण हैं लेकिन उनके अंदर जो तेज है वो इसलिए है क्योंकि मैंने मेरा तेज उन तक पहुंचा। मतलब ये तेज वास्तव में मेरा है लेकिन मेरा एक अंश है उनके अंदर और उन्होंने इस तेज को इसलिए प्राप्त किया कि मेरी कृपा है। यानी कि अगर आप कहीं पर देखते हो कोई तेजस्वी व्यक्ति तो आपको फौरन भगवान की याद आनी चाहिए कि भगवान का तेज है उसके अंदर। और उसके बाद भगवान कहते हैं जयोस्मी। जय का मतलब होता है विजय, सक्सेस। हर कार्य के अंत में जो विजय प्राप्त होती है उस विजय का जो स्वाद है वो भगवान कहते हैं जयोस्मि। जैसे जब वर्ल्ड कप खेला जाता है तब सब लोग कितना एक्साइटेड होते हैं और जब कोई विकेट गिरता है या फिर कोई रन उसको प्राप्त होते हैं तो कितना ज्यादा एक्साइटेड चिल्लाते हैं और उसके अंदर पूरा मदहोश हो जाते हैं। तो ये फीलिंग जो है कि अंदर से जो एक एक्साइटमेंट आ रही होती है कि वो कहाँ से आ रही है, इसे लगता है बार बार उस आनंद का रोज, मतलब उसका उस आनंद को रियलाइज करना चाहते हैं जो जय अंदर से जो आनंद दे रहा होता है कृष्ण, वो जो आनंद है वो कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण की कारण है। वैसे जब जैसे हम लोग जब विजय प्राप्त करने के समय जो टेस्ट प्राप्त होता है, बेशक सफलता के लिए एक मनुष्य एक जीव बहुत बहुत कार्य करता है फिर सफलता प्राप्त होती है, लेकिन सफलता प्राप्त करने के बाद जो टेस्ट का अनुभव करता है ना, कृष्ण कहते हैं वो मैं हूँ, जयोस्मी। और आगे कहते हैं व्यवसायोस्मी। व्यवसाय का क्या मतलब होता है कि साहस, यानी अपने जीवन को जोखिम में डालने का साहस। अभी हम देखते हैं मनुष्य के अंदर जो है ना वो बहुत बहुत साहस है, और इस साहस को व्यवसाय कहते हैं। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जैसे कोई लोग होते हैं वो ऊपर ऊपर हेलीकॉप्टर जाता है, फिर वो क्या करते हैं हेलीकॉप्टर पर जब बहुत ऊपर जाता है तो वहां से वो जंप लगाते हैं, जंप लगाते हैं मगर पैराशूट को ओपन नहीं करते हैं। वो आते हैं नीचे, गिरते हैं गिरते हैं गिरते हैं गिरते हैं, और फिर एक ऐसा मतलब थ्रिल होने वाला होता है, कुछ ऐसा होता है कि फिर वो रास्ते में जब उनको लगता है कि अभी मैं अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, फिर वो पैराशूट को ओपन करते हैं। अगर उस समय पैराशूट ओपन ना हो तो उनका सर्वनाश हो जाए। आइडिया इज बीइंग ऑन द बॉर्डर ऑफ लाइफ एंड डेथ। जीव मनुष्य के अंदर एक ऐसा साहस है कि वो मृत्यु और जीवन के बीच का जो एक सेकंड का जो होता है ना रास्ता, वहां तक जाने का हिम्मत कर सकता है। जैसे कुछ लोग मौत के कुएं में बाइक चलाते हैं, है ना, ये कितना बड़ा रिस्क है, कितना बड़ा एडवेंचर है कि वो समझते हैं कि अगर थोड़ा सा भी बाइक जो है वो स्लिप हो गया तो उनकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक साहस होता है। अभी ये जो है ना, अगर देखा जाए तो डार्विन के इस थ्योरी के बिल्कुल अगेंस्ट है, क्योंकि डार्विन क्या कहता है कि हर कोई जीव अपने जीवन की सुरक्षा करने के लिए स्ट्रगल करता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है जी मनुष्य जो है वो अपने जीवन को रिस्क में डालते हैं। कभी कभी बहुत ही खतरनाक कोई राइड्स होती हैं, उसमें हम बैठते हैं, उस आनंद को रियलाइज करने की एक इच्छा होती है। अभी देखो ये इच्छा जो है वो केवल मनुष्यों में होती है, जानवरों में नहीं होती है। कोई भी चूहा ये नहीं सोचेगा चलो बिल्ली आई है, मैं जाता हूँ जाता हूँ जाता हूँ, बिल्ली के मुंह को टच करके फिर वापस आ जाता हूँ, नहीं, उसके मन में ऐसा ये कोई साहस नहीं होता है। ये केवल मनुष्य के अंदर होता है। और ये क्यों होता है, असल क्या बात है, ये साहस भगवान ने हमारे अंदर दिया है, और ये साहस हम सबको भगवान को महसूस करने के लिए, कि भगवान की महानता को महसूस करना। एक जीव के अंदर इच्छा है कि वो किस तरह से भगवान को रियलाइज करे। जब आत्मा मनुष्य शरीर में आती है तो उसके द्वारा वो कृष्ण प्राप्ति का जो आनंद है उसको प्राप्त कर सकती है। केवल मनुष्य जीवन में भी हम ये साहस कर सकते हैं कि हम कृष्ण प्रेम करने का दावा करें, और कोई जीव ये दावा नहीं कर सकता। कृष्ण प्रेम ये बहुत बड़ी बात है, जीव जो कि एक बूंद के समान है और वो समुद्र को प्राप्त करने की इच्छा करती है ना। एक हमारी एक कोई भी एकदम टाइनी एक हमारी कोई हैसियत नहीं है, जीव आत्मा की कोई औकात नहीं है, और वो कृष्ण को प्राप्त करने की, कृष्ण को पाने की, कृष्ण को अपनाने की जिद पकड़ सकती है। उसके अंदर इतना साहस है, और ना केवल ये जिद कर सकती है बल्कि ये इतिहास गवाह है कि वो भगवान को प्राप्त कर लेती है। भगवान को वैसे भगवान अजित है, भगवान का एक नाम है अजित। अजित का मतलब होता है जिसको कभी भी जीता नहीं जा सकता, कुछ भी हो जाए, संसार की कोई भी ताकत, त्रिलोकी की ताकत भी यदि वो एक साथ जमा हो जाए ना तो कृष्ण को जीता नहीं जा सकता। लेकिन भगवान ने मनुष्य के अंदर एक जीव आत्मा जब मनुष्य शरीर में जाती है तो उसका साहस इतना बढ़ सकता है कि वो अजित भगवान को भी जीत सकता है। तो ये साहस हमें कृष्ण प्राप्ति के लिए, कृष्ण को जीतने के लिए हमारे अंदर, और एक मनुष्य की ये सक्सेस है, मनुष्य जीवन की ये सक्सेस है कि वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करे। लेकिन होता क्या है, क्योंकि अज्ञानता के कारण हम उस सक्सेस की ओर नहीं जाते हैं, तो फिर क्या होता है, हम अलग अलग एडवेंचर्स की ओर जाते हैं, क्योंकि वो साहस तो हमारे अंदर है, तो हम कुछ और प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ और जानने की या कुछ और रियलाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वास्तविक जो लक्ष्य है उससे हम लोग हट जाते हैं, तभी ये सब उल्टी सीधे चक्करों में पड़ते हैं। वैसे जो वास्तविक आनंद की सीमा है ना, वो केवल भगवान के नाम में है, भगवान की लीलाओं को श्रवण करने में। जैसे जैसे हम भगवान की लीलाओं को श्रवण करते जाते हैं, भगवत प्रेम में जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, उस समय हमारे अंदर जो भाव है ना, वो उन्नत होते जाते हैं। कभी हम रोमांच होने लगता है, कभी कंपन होने लगता है, कभी श्वेत होने लगता है, कभी वैवर्ण्य, कभी वैपथ्य संगठन होने लगता है, गला रुद्ध जाता है, और हम उन भावों को, जो महाभाव जो होते हैं, उनको ये जीव के अंदर ये कंडीशन पॉसिबल है कि इसी शरीर में वो कृष्ण को रियलाइज करने लगता है। जब हम महाप्रभु के विषय में श्रवण करते हैं, तो महाप्रभु के अंदर अष्ट सात्विक विकार आते थे, और वो अपने आप को यहाँ तक कि जगन्नाथपुरी में एक स्तंभ है, उसको गरुड़ स्तंभ कहते हैं। जब महाप्रभु जब जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे, तो वो इतने अंदर से भावुक हो जाते थे, उनका पूरा शरीर जो है वो कांपने लगता था, वो अपने आप को उस स्थिति में रख नहीं पाते थे। फिर वो क्या करते थे, वो जो गरुड़ स्तंभ था ना, उस गरुड़ स्तंभ को इतना कस के पकड़ते थे, वो हिल रहे होते थे, अपना कंपन नहीं रोक सकते थे। और आज भी अगर आप देखो तो गरुड़ स्तंभ पर महाप्रभु की उंगलियों की छाप है, ये जो फिंगर टिप्स के जो निशान है ना, वो आज भी है। यानी कि अब वो मार्बल का स्तंभ है, उस पे हम हाथ रखेंगे तो उसको तो दबेगा नहीं ना, लेकिन वो फिर भी इतना उनके अंदर तेज था कि वो उनके अंदर इतना भाव था कि वो पत्थर भी पिघलने लगते थे। ऐसा एक पत्थर है वहां पर जगन्नाथपुरी में, कि वहां पर महाप्रभु जब कृष्ण विरह का आस्वादन करते हुए जब लेटे हैं, तो जब पत्थर के ऊपर लेटते हैं तो वो तो सीधा ही होता है, लेकिन जब हम बेड के ऊपर लेटते हैं तो बेड कैसे ऐसे हमारे शरीर की शेप में झुक जाता है, इस तरह से महाप्रभु के शरीर के शेप में जो वो है ना, इतना बड़ा पत्थर है, वो भी उनकी बॉडी का पूरा इसके अंदर स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, ऐसे कि उनके अंदर इतना भाव आया। तो ये वास्तव में जो ये साहस है वो किस लिए है, कृष्ण के प्रेम को आस्वादन करने के लिए। और भगवान कहते हैं जयोस्मी व्यवसायोस्मी, जय करने के टाइम पर, विजय के टाइम पर जो आनंद आता है वो मैं हूं, और जो ये साहस है तुम्हारे अंदर वो मैं हूं। और आगे कहते हैं सत्वम सत्ववतामहम, यानी हर किसी के अंदर, आज हम देखते हैं पावर लोगों के अंदर, लोग अपने पावर के ऊपर बहुत घमंड करते हैं कि हमारे अंदर इतना बल है हमारे अंदर, तो भगवान कहते हैं कि पावर जितना भी सत्व है जिसके अंदर, वो सारा बल जो है वास्तव में मेरा एक अंश है उनके, वो बलवानों में सबसे महान बलवान है। जब भगवान दुर्योधन के पास आए ना, दुर्योधन ने भगवान को कहा कि मैं पांडवों को एक सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा, तब धृतराष्ट्र को भगवान ने कहा समझाइए महाराज अपने पुत्र को, ये पूरे कौरव समाज को ले डूबेगा। तब दुर्योधन ने कहा आप कृष्ण को ऐसे बोला शांत रहिए वासुदेव, वरना मैं आपको बंदी बना दूंगा। तब कृष्ण ने कहा मुझे बंदी बनाओगे, उस शांति दूत को बंदी बनाओगे जिनके स्वागत के लिए स्वयं पितामह भीष्म आचार्य द्रोण और कृप गए थे, तो मुझे क्या बंदी बनाओगे दुर्योधन, जब मैं एक दिन का था ना, आज तो मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, जब मैं एक दिन का था उस समय भी अपने मामा के द्वारा जो इतने बड़े बड़े तालों में मुझे बंदी बना के रखा था ना, एक दिन का था तभी भी सारे ताले तोड़ के चला गया था, तो मुझे क्या बंदी बनाओगे। तो यहाँ पर श्री रूपा जी कहते हैं कि जब कृष्ण इस धराधाम पे विद्यमान थे तो कोई भी उन्हें बल में परास्त नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि अपने बाल्यकाल में उन्होंने गोवर्धन तक उठा लिया, तो भगवान के बल की क्या कोई सीमा नहीं है। इसे भगवान कहते हैं जितने भी बलवान है वो जान लें कि उनका बल में मेरे कारण है। मैं तो आपको जब यदि कोई बलवान दिखे तो उस समय आपको कृष्ण की याद आनी चाहिए। एक ऐसा बहुत बड़ा बलवान था जिसे कुश्ती खेलते ना ऐसा था, उसका नाम था मोहम्मद अली किल्ले। तो वो बहुत ही ज्यादा अपने ऊपर उसको बहुत ज्यादा घमंड था, उसके पास बहुत सारे वो बेल्ट मिलते हैं ना जैसे जीतते हैं तो, ऐसे वो समझता था आई एम द ग्रेटेस्ट, हर वक्त बोलता था मैं ग्रेटेस्ट हूँ मैं ग्रेटेस्ट हूँ। तो कुछ समय के बाद क्या हुआ, उसको पैरालिसिस हो गया और फिर वो बेड पर बैठा हुआ। तब उससे आकर कुछ लोग पूछते थे क्या अब भी आप यही कहोगे कि आई एम अ ग्रेटेस्ट, तब उसने कहा हाँ मैं अब भी यही कहूंगा आई एम ग्रेटेस्ट, लेकिन आगे लगाऊंगा फूल, आई एम ग्रेटेस्ट फूल। मैं अपने आप को सबसे ज्यादा महान मानता था, लेकिन वो महान यदि चाहे तो किसी को बल दे सकता है, और वो यदि चाहे तो उसका बल हरण कर सकता है। वास्तव में हमारे पास जो भी योग्यता है वो कृष्ण की दी हुई है, इसलिए हर एक योग्यता के लिए कृष्ण का धन्यवाद करना चाहिए, हर समय कृष्ण को स्मरण करना चाहिए, भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहिए और पवित्र नाम का हृदय से आस्वादन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे बोल।